विचार करके देखा, देख करके कहा ये तो देवताओं की माया नहीं, ये तो माया की माया नहीं, ब्रह्मा की भी माया नहीं हो सकती और किसी की भी माया विष्णु इत्यादि की नहीं हो सकती। बहुत चिंता किया तो देखा जा रहे ये तो बछड़े सब कृष्ण हैं, ये तो कृष्ण ही बने हैं। कृष्ण के तरफ में मुस्कुरा कर कहा भैया अरे तुम्हारी एक मैया के दूध पीने से पेट नहीं भरा, इतने गौओं को माँ बनाया और इतने गोपियों को मैया बनाया और सबका दूध पान कर रहा है, ये तो बड़ी विचित्र बात कर, क्यों किया ऐसा। और उसी समय गर्गाचार्य की आपको बातें सुनाया, गर्गाचार्य ने आकर के घोषणा कर दी इस वर्ष में बहुत ही शुभ लग्न है, जो अपनी कन्याओं का विवाह कर देगा, बागदान कर दे, जैसे भी कर देगा उनका मंगल होगा, उनके पति से कभी वियोग नहीं होगा, परम सुंदरी बनी रहेगी, उनको रिद्धि सिद्धि सब प्रकार की होगी। बस जितने ग्वाल वाले थे उन बच्चों के साथ ही में शादी कर दी और वो बच्चे कृष्ण बने हुए थे, प्रक्रांत रूप में सब गोपियों के साथ मिलती की शादी कि कोई समझ भी नहीं सका। वो गोपियां भी समझती हैं कि हमारी शादी किसके साथ में हुई, उन बच्चों के साथ, किंतु हुई तो कृष्ण के साथ में, यही परकिया का रहस्य है। और किसी से शादी नहीं हुई, कृष्ण से ही हुई है, किंतु घर वाले समझ रहे हैं जैसे उसकी शादी उससे हुई, ये जोग माया ने अपने प्रभाव से ये सब काम करा दिया। पतियों के साथ में कभी इनका मिलन नहीं हुआ, नहीं करने दिया जोग माया, इनका मिलन कृष्ण के साथ में। ऐसी सारी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी का सहारा लेकर के कृष्ण ने ऐसी सब लीलाओं को, इस तरह से उन्होंने एक ही साथ में कितनी लीलाओं का आविष्कार किया, इस तरह से और भी लीलाओं के संबंध में भी समझना चाहिए। अब समय अधिक हो गया है हरिकथा के लिए, अभी 14-13 अध्याय हुए हैं, बाकी 90 अध्याय तो अभी दशम स्कंद के और पूरा एकादश पड़ा है, इसलिए मैं वक्तव्य अपना संक्षेप में ही समाप्त कर रहा हूँ। अब कथा सुनिए, ये संक्षेप में ही सब कथाओं को और उनके सारों को बतलाएंगे, हम कभी कभी जदा कदा कुछ बतलाएंगे। गौ प्रमानंदे चित्त को मुग्ध कर रहे हैं, उधर में किशोरी जी भी तो कुछ कर रही होंगी। एक दिन नंदगांव में गई और किसी गोपी के घर में चली गई, तो गोपी उनसे कुछ पूछ रही है, किशोरी तेरा नाम क्या है, तू कौन है, जरा कीर्तन में सुनिए जल्दी। ये गोपियों का यह प्रेम पूर्व राग कहलाता है। अभी कृष्ण से गोपियों का साक्षात मिलन नहीं है, जब पूर्व राग में ये स्थिति है तो मिलने पर क्या स्थिति है? हमने कही भाई कीर्तन होगा, कीर्तन कैसा सुंदर वर्णन किया है, समय रहने से उसमें से दो एक श्लोकों का हम लोग और भी अच्छी तरह से व्याख्या करते, किंतु अभी लीलाएं बहुत बाकी हैं, इसलिए अभी छोटा सा कोई एक कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद में फिर हम लोग अपने प्रसंग पर लौटे।
श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इसमें मथुरा उसमें गोकुल, इसमें मथुरा
धीरे धीरे जमुना के धीरे धीरे।
आप लोग इस समय जाने के लिए चंचल हैं तो अभी केवल दो मिनट बैठूंगा। ये गोपियाँ, ये गोप कुमारियाँ कौन थीं? साधारण गोपियाँ केवल बालिका ही नहीं हैं, और कृष्ण उनसे ठठोली कर रहे हैं और उनको निर्वस्त्र होने के लिए कहा। उनके वस्त्र लेकर के चले गए, वह नंगती खड़ी रहीं और कृष्ण ने कहा जब पानी से निकल आओ, तो वो निकल रही तो टेढ़ी होकर के निकल रही अपने अंगों को छिपा करके। कृष्ण ने कहा ऐसे नहीं, सीधी खड़ी होकर के और हमको प्रणाम करो। ये सब लीलाओं में कुछ काम फरी दृष्टि वाले लोगों के हृदय में कुछ काम का भाव आता है, उन्हें प्रकार से कृष्ण लीलाओं में अनुचित भाव और अन्याय भाव देखते हैं, किंतु यह कृष्ण और गोपियों में नहीं है, देखने वाले के हृदय में ही वो काम है। इसको इस तरह से समझ सकती हैं कि दंडकारण्य के 60,000 ऋषि लोग और श्रुतियाँ, वेद की मंत्र जो ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं वो कृष्ण की वाणियाँ हैं, मूर्तिमान रूप धारण करके एक दो वर्ष नहीं, केवल 1,000 वर्ष नहीं, 1,00,000 वर्ष नहीं, कितने ब्रह्मा पलट गए? 1-2 ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी पलट गए। उतने दिनों तक ये तपस्या कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप उनको वो वस्तु सिद्धि हुई है, स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि के बाद में तब वो गोपी के कुल में छोटी छोटी बालिका के रूप में आई हैं, और अभी कृष्ण नहीं ग्रहण करेंगे, उनमें कुछ अभी भाव दोष है। उस भाव दोष को कैसे शुद्ध करेंगे? अपने विरह से और गोपियों के संग से जो नित्य सिद्धाएं हैं, इसलिए कात्यायनी की पूजा की व्यवस्था की गई। ये कात्यायनी और कोई नहीं, राधा जी के प्रकाश ये जोग माया स्वरूपणी है। दूसरी बात एक देखो, कात्यायनी की पूजा की दुर्गा देवी मान लिया, तो जिस देवी की पूजा की जाती है वही देवी तो प्रसन्न होकर के वर देने आएंगी। तो एक महीने के बाद में जब पूजा समाप्त हुई तो कात्यायनी देवी को आकर के उनको वर देना चाहिए था, तो कौन आया? आया कौन? उनको वरदान किसने दिया? कृष्ण ने। इसलिए ये समझो जे ये कात्यायनी भी कृष्ण हैं, इसलिए कृष्ण प्रकट हुए, नहीं तो कात्यायनी देवी जी अठभुजा के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाती, ऐसा मत समझना। ये गोपियाँ की आराधना बल्कि यदि होगा तो वो जोग माया कर लें। कृष्ण स्वयं करते हैं गोपियों की आराधना, न पारे हम निर्बद्ध संजुजा, जब कृष्ण ही उनकी आराधना करते हैं तब तो फिर और की तो बात क्या है। इसलिए साधारण नहीं, इतने दिनों तक तपस्या करके आई और कृष्ण स्वयं उनके इच्छा को पूर्ण करने जा रहे हैं। बतलाओ तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी स्त्री है जो कृष्ण से अपने अंगों को नहीं दिखला सकती? है कोई? उसके अंदर में बाहर में सर्वत्र ही तो कृष्ण है, और ये भी जड़ शरीर, वो तो आत्मा के भी साक्षी हैं, उनसे कोई चीज बिना देखाई हुई रह सकती है? हम जिसको नहीं देखते हैं उसको भी कृष्ण देखते हैं। हम देखते हैं कि साधारण एक माता पिता अपनी छोटी सी बच्ची को स्नान कराती है, और बाप भी अपने बेटी को मैया की अनुपस्थिति में यदि बेटी ने टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, तो बाप क्या करेगा? उनके अंगों को धोएगा नहीं, इसलिए उसके अंदर में काम का विकार आ जाता है। नहीं तो, कृष्ण तो सबके अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं आप लोग। द्रौपदी जी का चिर दुशासन खींच रहा है, 10,000 हाथियों का बल लेकर कर्ण देख रहा है, दुर्योधन का साब साब और साबास साबास कर रहा है, नंगी करके जब हमारे जंघे पर बैठा दो। हाँ, हमको कहती है अंधे का बेटा अंधा ही होता है, ठीक, जल्दी ले आओ। देखें जामधा का पुत्र अंधा होता है। रजस्वला में स्थिति में दुशासन उसको खींच करके ले आया, पतियों के सामने गुरुजनों के सामने उनको लज्जित करना चाहते हैं। वस्त्र अब केवल थोड़ा सा ही है, खींच रखा है, बस एक खींच देने से ही बस सब खुल जाएगा। देखा जैसे पति लोग रक्षा नहीं कर सके, हमारे पितामह और गुरुजन भी रक्षा नहीं कर सके, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु से बिना, हे गोविंद राख सब, अब तो जीवन है, अब लज्जा तुम्हारे हाथ में है। वो मन ही मन कह रही थी, कृष्ण सुन करके द्वारका में छटपटा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। रानियों ने पूछा, आप छटपटा क्यों रहे? हमारे भक्त पर भीड़ पड़ी है, मैं जाना चाहता हूं, मैं नहीं जा पा रहा। क्यों? अभी थोड़ा सा उसको अपने ऊपर में विश्वास, दांतों के तले अपने अंचल को दबाए हुए हमसे प्रार्थना कर, अभी अपने दांतों पर भरोसा है और हाथ से भी पकड़ी हुई है। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब वो हाथों से भी छोड़ दे, अपने समस्त प्रयासों को छोड़ दे और त्राही होकर के हमारे चरणों में संपूर्ण रूप से अनुगत हो जाए, उस समय अभी तुरंत मैं इसकी रक्षा करूं। द्रौपदी ने देखा कि अब दांतों से काम नहीं चलेगा, हाथों से काम नहीं चलेगा, हाथ को ऊपर उठा दिया, आंखें बंद कर दी, दांतों के तले से छोड़ दिया। हा नाथ ऐसा। पर सब कृष्ण तो कहीं दूर नहीं थे, उसके अंदर और बाहर सर्वत्र थे। अब जो वो कपड़ा निकलने लगा, कौन सा कपड़ा है? कृष्ण ही वस्त्र बन गए। जब वस्त्र बन गए तो उनके अंगों में लिपट लिया, तो कृष्ण से उनकी लज्जा कहाँ रही? वस्त्र तो कृष्ण है ना, तो वहां तो कहते हैं जैसे द्रौपदी की लज्जा रखी, हम तो देखते हैं कि तुम्हारे जैसे कामुक लोगों की दृष्टि में द्रौपदी की लज्जा कहाँ रही? वो तो कृष्ण कपड़े बन करके लिपट रहे हैं, क्या वो देख नहीं रहे? उनको काम भाव नहीं होगा? इसलिए नहीं, ऐसा मत समझो, कृष्ण जगत पिता है, सबके प्रभु हैं। ये गोपियां साधारण नहीं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि कोटि कोटि ब्रह्मा की आयु पा करके और तपस्या करके तब उस स्थिति में आए हैं, गोपियां साधारण नहीं है। इसलिए गोपियों के महाने हम लोगों को दिखला रहे हैं, अपना सर्वस्व यदि काम इत्यादि जो कुछ भी कृष्ण के चरणों में यदि अर्पण करेंगे और संपूर्ण रूप से उनकी सेवा का यदि व्रत लेंगे तो कृष्ण की कृपा हो सकती है। अभी कुछ जैसे हमने समर्पण किया, क्या एक फूल कृष्ण को दिया, वस्त्र दिए, कपड़े दिए, सब कुछ धन संपत्ति कृष्ण को अर्पण किया, तुमने अपने को अर्पण किया या फूल अर्पण कर रहा है? इस पर विचार करो, कोई दूसरी वस्तु अर्पण करने से नहीं होगा। इति पुंसार्पिता विष्णु चे नवलक्षण, पहले अपने को अर्पण करो और तब फिर तुम्हारा अर्पण करने की जरूरत नहीं, सर्वस्व तुम्हारा अर्पित हो जाएगा कृष्ण के चरणों में। इसी सब की शिक्षाओं को देने के लिए, जो कोपिया साधारण नहीं है उनकी मनोभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अगले शरद ऋतु में उनके साथ निराश करने का एक पीठ प्लेटफॉर्म बनाए। इन चीजों को अच्छी तरह समझें, गोपियों का आदर्श ग्रहण करें, गोपियों के अनुगत्य के बिना ब्रज में कृष्ण को नहीं पाया जाता, इस चीज को समझें। ये गोपियों ने अपने अंतिम दिन में राधा और ललिता विशाखा जी को बुला लाई और उनका संग किया और तब फिर उस समय में कृष्ण वहां पर आए और सबके साथ उनका संग होने से तब उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया। इसलिए बिना गोपियों के अनुगत्य के गोपियों जैसा ब्रज प्रेम नहीं हो सकता है और ऐसा हुए बिना कृष्ण को कोई भी वशीभूत नहीं किया कर सकता है। श्रीमद् भागवत का यही सार चीज है, इससे बढ़कर के श्रीमद् भागवत का और कोई प्रेम नहीं है, यही प्रेम ही एकमात्र हम लोगों के लिए प्रयोजन है। जो इस भागवत को सुन करके गोपियों जैसा प्रेम जिसके हृदय में उमड़े, जिसको प्राप्त हो, यही श्रीमद् भागवत का चरम और एकमात्र फल है। आज इस वक्तव्य के साथ में समय अधिक हो गया है, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी एक कीर्तन नन्नुमल जी।
नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, ओ जशमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन हाँ गोपी पराना धना मदन मनोहर, गोपी पराना धना गोपी पराना धना मदन मनोहर, गोपी पराना धना कालिया दमन विधान, कालिया दमन विधान, ओ गोपी पराना धना मदन मनोहर, कालिया दमन विधान, कालिया दमन, ओ जशमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, ओ जशमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन, अमल हरि नाम अमि अभिलाषा, अमल हरि नाम ओ बिपिन पुरंदर नबिन नगर बर, बिपिन पुरंदर ओ बिपिन पुरंदर नबिन नगर बर, बिपिन पुरंदर बंसी वदन सुवासा, बंसी वदन सुवासा, ओ बिपिन पुरंदर नबिन नगर वर, बंसी वदन सुवासा, बंसी वदन, ओ जशमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, जशमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन, ब्रज जन पालन सुर कुल नाशन, ब्रज जन ओ ब्रज जन पालन सुर कुल नाशन, ब्रज जन आनंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला, हाँ गोविंद माधव नवनीत तसे कर, गोविंद गोविंद माधव नवनीत तसे कर, गोविंद सुंदर नंद गोपाल, सुंदर नंद गोपाल, ओ जशमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, ओ जशमती नंदन ब्रज बर नागर जामुना तट चरा गोपी बसन हर, जामुना तट चरा गोपी बसन हर, जामुना तट चरा जय जय रास रसित कृपा माँ, रास रसित कृपा ओ सीराधा वल्लभ वृंदावन नटवर, सीराधा वल्लभ वृंदावन, सीराधा वल्लभ वृंदावन नटवर, सीराधा हाँ भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय, ओ जशमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, ओ जशमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, ओ जशमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन कान ओ जशमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन कान
ज्ञानंजन सदा चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृशे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते प्रणमामि हा देवी का कुभर गद गद राज्य वाचा जाति निपत्त भूरि भटारती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणी गणना अंगश्यामलिं छटा विरवितो मंदे कृतेन्दे वरं जग्गंजागुदरोचि संविदधतं पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् जलभुजं ध्यायेताम् भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादिकरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया इति विज्ञाय राधे आज हरि गुरु वैष्णव की कृपा से सप्तम दिवस हम लोगों का समाप्त हुआ और अष्टम दिवस आज हरि कथा भागवत कथा आरंभ हो गई। कल भीमकासुर वध प्रसंग आया। भेनुक माने होता है गधा, गधान माने होता है अज्ञानता इग्नोरेंस। अज्ञानता क्या, कृष्ण ही एकमात्र जगत के आराध्य, वही जगत के सृष्टा समस्त ईश्वरों के ईश्वर, अखिल रसामित सिंधु सर्वशक्तिमान है, जीव उनके नित्य दास है। हम अभी उनको भूल करके इस जगत में पड़े हुए हैं। कोटि कोटि जन्मों से, अनादिकाल से इस संसार रूपी चक्र में घूम रहे हैं। कितनी बार, करोड़ों करोड़ों बार आए, स्त्री पुरुष का संग, धन संपत्ति प्रतिष्ठा, यहाँ तक के भी इंद्र हुए होंगे, ब्रह्मा भी हुए होंगे और पैखाने के कीड़े भी हुए होंगे, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी मनुष्य, कभी कुछ हुए हैं, किंतु संसार की तृप्ति मिटी नहीं, बल्कि आग में घी के तरफ में और बढ़ती ही गई। अब भगवान की कृपा से, कुछ साधुओं के संग मिलने से, गुरु के संग मिलने से ये थोड़ा सा ज्ञान है। तो ये सब ज्ञान नहीं होने से, भगवान का भजन करने से ही हम पुनः भगवान के चरणों में पहुंच करके शांति और सुख लाभ कर सकते हैं। कृष्ण प्रेम ही जगत में हमारा प्रयोजन है। इस चीज को नहीं जानना अज्ञानता है, इसलिए संसार में चक्र में पड़ करके कभी देवता कभी दानव कुछ होता है। तो ये गधा का स्वरूप है नहीं जानना, भगवान को जीव को नहीं जानना। गधा संसार के जितने गंदे जो कुछ कपड़े होते हैं वो सब को वहन करता है। पहाड़ों में गुड़ घी चीनी सब ले जाता है अपने पीठ पर लाद करके, उसका कोई भी रसा स्वाद नहीं करता। गर्मी के दिनों में ताज़ा हो जाता है और बरसात के दिनों में दुबला हो जाता है। ऐसा मूर्ख है, गर्मी के दिनों में घास नहीं रहती तो चरता चरते चरते 2 माइल 4 माइल चला जाएगा, आज तो मैंने इतना घास चर लिया, मोटा हो जाता है, स्थूल विचार का है। और जब घास उगती है बरसात के दिनों में, थोड़ा सा चर करके देखता है मैं तो अभी थोड़ी ही देर चरा, अधिक नहीं चरा, वो दुबला हो जाता है। तो जितने कूड़े करकट जितने गंदे कपड़े हैं धोबी भी के यहाँ, वो सब अपने पीठ पर लाद लेकर के जाता है, किंतु उसका कोई भी आस्वादन या पहनना खाना पीना नहीं कर सकता। ऐसे ही जगत के लोग जो भगवान के भूले हुए हैं गधे के समान हैं। धर्म ही नहीं ना पशु भी समान, वो पशु हैं। इसलिए उसको बलदेव जी माने गुरु जी मारते हैं। ये गुरु का काम है अज्ञानता। जिन्होंने सदगुरु नहीं किए, संतों के आश्रय में नहीं आए, तत्वज्ञ रसिक वैष्णव के संग में नहीं आए, उनको कभी भी सुख और शांति नहीं मिली। गुरु जी कृपा करके अपने तत्वज्ञान से अपने कृष्ण संबंधी मंत्रों से उसका उद्धार कर देते हैं। तब इन चीज़ों को जान करके भगवान के चरण में शरणागत होकर के उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। काली का प्रसंग कल आया, इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, अधिक दूर की बात नहीं है, अभी 5000 वर्ष पहले की बात। और वो भी हम जहाँ रोज वृंदावन की परिक्रमा में जाते हैं तो काली ह्रद को हम देखते हैं। काली ह्रद के इस लीला में बहुत सी शिक्षाएं। पहली शिक्षा ये, सौभरी जी वहाँ पर एक योगी थे, ध्यान लगाते थे, तपस्या करते। भगवत आराधना किसे कहते हैं नहीं जानते। 10000 वर्ष की आयु में 10000 तक जमुना के पानी में खड़े हो करके तपस्या की, कठोर तपस्या, किसी से बातचीत नहीं करते। यदि ऐसा कोई साधु मिल जाए तो यहाँ के जितने आदमी हैं मथुरा पुरी ब्रज के सब लोग उसके पास में चले जाएंगे, ये कथा नहीं सुनी। ऐसे ही लोग हैं, बुद्धि स्थूल है। यदि कोई खड़ा हो गया हाथ करके 4 दिन तो बस मथुरापुरी जुट जाएगी वहां। ये नहीं देखी थी भगवान से उनको प्रीति है कि नहीं, भगवान का नाम करते हैं कि नहीं। तो वो 10000 तपस्या की और एक ऋषि के प्रति उन्होंने, ऋषि नहीं गरुड़ के प्रति अपराध कर दिया। अपराध क्या? वो अपराध ये था कि वहाँ पर मछलियाँ रहती थीं। एक बार बाई चांस गरुड़ जी का अपना प्रिय स्थान है वृंदावन, और विशेष करके कृष्ण लीला के लिए उन्होंने ही वो अमृत का कलश वहाँ पर रखा था, जैसे कृष्ण की लीला होगी हमारे प्रभु आएंगे, इसलिए वृक्ष हरा भरा रहता है। तो वृंदावन का जदा कदा वो दर्शन करने आते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते करते आज कुछ क्लांत हो गए और उसी जगह के कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। इतने में मछलियों ने चाल दिया। चाल दिया मैंने क्या, ये बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ा मच्छर उछला। गरुड़ जी जाति के स्वभाव से हैं भगवान के परिकर, किंतु स्थूल रूप में अभी ऐसे दिखते हैं गरुड़ जी। किसी जीव का ऐसा सौभाग्य होगा उनके द्वारा, भगवान और भक्तों के द्वारा मारे हुए जीवों का उद्धार हो जाता है, बस झट उसको निगल लिया। मछलियां सब रोने लगी, सौभरी ऋषि के पास में गई। उन्होंने कहा, अरे गरुड़, निसंकोच होकर के यहाँ मछली को खा रहा है, इसमें से ले लिया। ये सब रो रही हैं सब, तुमको कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि फिर यहाँ उड़ करके आया कभी भी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, उसी समय में तुम मारो जाओगे, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। गरुड़ जी हंसे। संतों से विरोध नहीं करना चाहिए, ये तो संत नहीं, ये भगवान के नित्य परिकर हैं, इसलिए उनके अंदर में उस उनके प्रति अपराध होने से, देखो वैष्णव का यदि दोष भी देखो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वशम मंतव्य सम्यक दवसितो हि। साधु संतों का कोई दोष भी देखो जिसमें कुछ जगत का कल्याण निहित है, जो अनन्य रूप से भगवान का भजन करते हैं, उनका कंट्रोलर हम लोग शंकर जी ब्रह्मा जी और जम नहीं है, इस बात को समझ रखो। यदि भक्तों में कोई वासना भी खराब आई, कोई बात भी हुई कुछ ऐसी, तो उसके नियंता कौन है? प्रभु वो सब व्यवस्था करते हैं। इसलिए नाक उसमें मत गलाओ, उनकी निंदा इत्यादि से दूर रहो। निंदा तो साधारण आदमी की भी मत करो, कभी नहीं। विशेष करके जहाँ दो महिलाएं बैठ जाएंगी, विश्व ब्रह्मांड की सब भागवत की कथा पुराण महाभारत वेद उपनिषद सब उनके यहाँ आ जाएंगे, खबरदार ऐसा मत करो। यदि बैठो भी तो लीला कथा सुनो कुछ, या कुछ प्रश्न करो। तो वो भगवान का के भक्त का कुछ उन्होंने शासन किया और ये हुआ कि उसके अंदर में प्रभु की दृष्टि खराब हो गई और उसके अंदर में काम भावना जग उठी। 10,000 वर्ष बिना कपड़े के एकदम पानी में, ठंडे में, गर्मी में वहीं पर रहते, वर्षा में भी रहते, निराहार, हवा भी छोड़ दी। दुर्गति ये हुई, उसका फल उल्टा हो गया, अंदर में कामना हुई। वो जल से निकल करके मंधाता ऋषि के 50 लड़कियों के साथ में शादी की, जुआ पुरुष बन गए और 10,000 वर्ष और उनके साथ में रहे। 500-600 लड़के नाती पुनाती प्रचुर हो गए। एक दिन बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं शाम को, ओहो मैंने ये क्या किया, 10,000 की आयु के बाद में मैंने 10,000 वृंदावन में बैठ करके तपस्या की और उसके बाद में 10,000 भोगों में मैं लग गया। पर कामों के द्वारा काम का उपशम नहीं होता, शांत नहीं होता है, बल्कि आग में घी देने के समान में और प्रज्वलित होती है। आज तक कोई उदाहरण नहीं है जो भोगों से किसी को संतोष हुआ और चित्त शांत हुआ और बढ़ जाएगा। इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए, बस उसी समय में घर का मोह, सब स्त्रियों का नातियों का मोह छोड़ करके फिर वृंदावन में आकर के किसी साधु संत के आश्रय हो करके अब जो कर रहे थे तपस्या, अब की नहीं आराधना, भगवान मंत्र का यहाँ पर जप करो। तो इस तरह से उनकी तो ये दुर्गति हुई। अच्छा, वो तो चले गए अपना घर बार करने के लिए 50,000 स्त्रियों के साथ में शादी करने के, और जिन लोगों ने, जिन पत्नियों ने गरुड़ जी के विपक्ष में विरोध में उस ऋषि से नालिश की थी और उनको भी मन ही मन में अभी संपात कर रही थी गरुड़ को, ये हमारे पति को खा लिया, किंतु ये नहीं देखा जो उनका ही भाव सागर से उद्धार कर दिया, उनकी क्या दुर्गति हुई। उन्हीं के लिए वो कालियत आया अपने स्त्रियों को समान सामने सामने और वहां पर सब जलमय विष कर दिया, वो स्त्रियां भी मारी गई, ऋषि की भी दुर्गति हुई, इनको भी दुर्गति हुई। वैष्णव के साथ में विरोध करने से, निंदा करने से ऐसी ही गति। यदि ऐसा कोई बात देखो प्रणाम करके दूर चले जाओ, उनसे बातचीत मत करो, किंतु निंदा मत करो, उनसे द्वेष मत करो, कलह मत करो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। थोड़े समय में वो धर्मात्मा बन जाए, उनका यह सब दूर हो जाए। क्यों? भगवान की एकांकित कुछ भक्ति है, इसलिए इस विषय में सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, कालिय प्रभु उसके छत्रों पर चढ़ गए, फनों पर चढ़ गए और एक एक फन को अपने नृत्य से ताल पर ताल पैरों को दे करके ऐसे नाच रहे हैं कि जितने उसके फण थे सब फणों को कुचल दिया, खून उगलने लगा। अब वो सोच रहा है, अब तक कालिया की पत्नियां जी थीं, वो भक्त थी, बहुत बार उसको कहा था कृष्ण भजन करने के लिए, वो करता नहीं था। अब उसके अंदर में आई ये भावना, गरुड़ हमको उतना तंग नहीं कर सके, हार गया जरूर गरुड़ से, किंतु आज तो मालूम होता है ये छोटे बच्चा का जो भार है वो विश्व ब्रह्मांड का सब भार इसी में आ गया, अत्यंत वो दुर्बल हो गया, क्लांत हो गया, अब फनों को उठाने की स्थिति में नहीं था। उसमें बात है, अरे मालूम होता है ये लड़का नहीं है, हमारी पत्नियां कह रही थी वो सच बात है, पत्नियां कह रही हैं ये कृष्ण का विरोध कर रहा है, उनके कोमल हृदयों में, हृदय में, मस्तिष्क में, इधर में काट रहा है, ये मर जाए, विधवा हो जाना अच्छा है, ऐसे पति की आवश्यकता नहीं। जो पति भगवान की सेवा नहीं करता उनका मर जाना या उससे अलग हो जाकर के भजन करना ही उचित है। जिनके प्रिय न राम गए थे तजिए कोटि बैरीशम यद परम सम, तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजौ कंत ब्रज बनी तक भय जग मंगल कारी। भागवत में भी ऐसा लिखा गया, गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् पति न शस्यात्। पति न शस्यात् माने वो पति पति नहीं है जो अपनी पत्नी को भगवान का भजन करा सके, उसको स्त्री रखने का कोई भी अधिकार नहीं। इसी तरह से जो भगवान का भजन नहीं करता वो पति नहीं है, ये पति मर जाए हम विधवा हो जाए बल्कि अच्छा है। अभी तक तो यही कर रही थी और भगवान से कोई प्रार्थना नहीं की, और जब वो एकदम कुचल गया, असहाय हो गया, थोड़ा सा इधर उधर टस से मस नहीं कर सका, अब वो सोच रहा है ये हमारी पत्नियां जिसके लिए कह रही थी, ये प्रभु प्रभु मालूम होता है स्वयं है ये, नहीं तो इतना भार तो होता नहीं, मैं इतना तो दब नहीं जाता, मैं भाग भी सकता था किंतु भाग भी नहीं सका। हे प्रभु आप वही यदि है हमारी रक्षा। जब ही यह भाव आया तब गोपियों के, वो नाग पत्नियों के हृदय में ये भावनाएं, अब ये पति हमारा ठीक हो गया, अब ऐसे पति का ही संग है, इसलिए प्रभु से वो प्रार्थना करने लगे। क्या कस्य अनुभावो अस्य न देव वित्महे तमांग्रेणु स्पर्शाधिकार, और इसने पूर्व पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपस्या की, दान किया, आराधना की, कौन सा दान किया, कौन से तीर्थों में स्नान किया, जो आज भगवान के चरणों को अपने सिर पर नहीं रखने देता और प्रभु जोर करके रख रहे हैं, ये तो बड़ी इनकी है तुकी दया। जिसको लक्ष्मी जी बेलबन में आकर, यहाँ बेलबन में न जाने कितने वर्ष करोड़ों वर्ष तक आराधना की और प्रभु सम्मत नहीं हुए वृंदावन में ला करके उन चरण कमलों को देने के लिए, उनको आज वो चरण कमलों की कृपा ये पा, वो कैसा सौभाग्यवान है। इस तरह से प्रभु इसकी इसका प्राण रख दें, अब ये तो धार्मिक हो गया, धार्मिक पति ही चाहिए, विशेष करके आपका भजन करने वाला प्रभु प्रसन्न है। उन लोगों की कृपा से, उन लोगों की प्रार्थना से वो बच गया काली, नहीं तो जरूर मारा जाता, नरक में गति भी होती, किंतु प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। इन लोगों को कुछ लाइसेंस है, वो वेणुगीत जो कल हो रही थी ना, वेणुगीत में कहा ना, दिव्यो विमान गतया स्मरण अनुसारा भर्षक प्रसून खबरा मुमहोर विनिव्य। गोपियां कह रही अहो हम जगत में कोई दुर्भागा है और दुर्भाग्नि है तो हमारे समान कोई नहीं, हिरणियों की तो दशा देखो, हिरणियां अपने पतियों को आगे करके प्रणय की भीख मांगते हुए कृष्ण से एकदम मिल करके उनके मुखारबिंद को देखती हैं और अपनी आंखों की